नमस्कार भारत, तारीख 11 सितंबर दिन सोमवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। तूफान इरमा के असर से अमेरिका के फ्लोरिडा में जनजीवन ठप, 3 लोगों की मौत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान, शरीयत में मंजूर नहीं किसी तरह का दखल।
हम सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मदाखलत शरीयत में अगर होगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगी।
और पीरियड पर बीबीसी से इंटरव्यू के बाद गुजराती लेखिका काजल ओझा को मिली धमकी, पुलिस में की शिकायत।
मुझे लगता है विरोध करने का अधिकार किसी को भी है, गालियां बकने से या पब्लिक मोलेस्टेशन से मुझे नहीं लगता आप कुछ पाएंगे।
होगी वस्तुल्ला खान की डायरी और खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। कैरेबियाई द्वीपों में भारी तबाही मचाने के बाद इरमा तूफान अमेरिका के तटवर्ती प्रांत फ्लोरिडा से टकरा गया है। तूफान के बाद फ्लोरिडा में भारी बारिश हो रही है और सड़कों पर कई फुट पानी भर गया है। इस तूफान से अब तक फ्लोरिडा में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इरमा की प्रचंडता में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन लोगों को अब भी सचेत रहने को कहा गया है। लूटपाट की घटनाओं की आशंका को देखते हुए कई शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के लिए राहत कार्यक्रमों में तेजी लाने की घोषणा की है। दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में स्पेन के नडाल ने दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन को लगातार सेटों में 6-3, 6-3, 6-4 से हराया। नडाल का ये तीसरा यूएस ओपन खिताब है। इसके साथ ही 31 साल के नडाल ने अपनी करियर ग्रैंड स्लैम की संख्या 16 पहुंचा दी है। जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल शाकाश्विली यूक्रेन में दाखिल होने में सफल हो गए हैं। शाकाश्विली पोलैंड से यूक्रेन आ रहे थे, लेकिन उन्हें 2 बार रोका गया। शाकाश्विली ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अड़ंगा डालने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति पोरोशेंको की आलोचना की थी, जिसके बाद उनसे यूक्रेन की नागरिकता छीन ली गई थी। खुद को रोके जाने पर शाकाश्विली ने कहा, राष्ट्रपति पोरोशेंको ने पोलैंड के रेलवे प्रमुख को उस ट्रेन को रोकने का आदेश दिया था जिसमें मैं सवार था। उनका कहना था कि जब तक मैं ट्रेन से नहीं उतरता तब तक वे ट्रेन को चलने नहीं देंगे। मेरे पास टिकट था और जरूरी दस्तावेज भी। पोलैंड की पुलिस को भी मुझे पोलैंड से बाहर जाने देने में कोई समस्या नहीं थी। ये थे जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति शाकाश्विली के शब्द। इराकी कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति मसूद बरजानी ने संकेत दिए हैं कि अगर इराक आज़ादी के लिए जनमत संग्रह की उनकी मांग नहीं मानता तो वो भविष्य में कुर्दिश राष्ट्र के लिए अपनी सीमाएं खुद तय कर सकते हैं। इराक ने जनमत संग्रह को असंवैधानिक बताया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में तलाशी अभियान 3 दिनों के बाद कल खत्म हो गया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर तलाशी अभियान शुक्रवार को शुरू हुआ था। यह सर्च ऑपरेशन रिटायर्ड न्यायाधीश कोर्ट कमिश्नर AKS पवार की अगुवाई में चला। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सिरसा से स्थानीय पत्रकार प्रभुदयाल।
बहुत कुछ मिला है, लेकिन जैसे कैंप लगाए जा रहे थे वैसा नहीं मिला है। आधिकारिक तौर पे जिस चीज की पुष्टि हुई है उसके अंदर एक OB वैन है, लग्जरी गाड़ी है, 481 कार्टून है आतिशबाजी के, जो गैर कानूनी तौर पे उसके अंदर रखे हुए थे एक चारा फैक्ट्री के अंदर, वो मिले हैं। करीब एक ट्राली जो है लाठियों की मिली है डेरे के अंदर से। उनका जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर एक उन्होंने स्किन बैंक बनाया हुआ था जिसकी कोई मान्यता नहीं थी। DPRO की तरफ से ये कहा गया कि सभी अधिकारियों ने अपने साइन करके को सौंप दिए हैं, वो जल्द ही हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे।
ये थे प्रभुदयाल, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में कड़े प्रतिबंधों की कोशिश करता है तो वह इसे बड़ी पीड़ा के रूप में लेगा। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को एक ऐसा खूनी जानवर बताया है जो उत्तर कोरिया को परमाणु ताकत बनने से रोकने की कोशिश कर रहा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव।
Championship point for the second time to Nadal. He serves to the backhand of Anderson. In for the volley, Nadal. Champion in New York once again.
दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी 31 बरस के राफेल नडाल ने अब से करीब 2 घंटे पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। नडाल ने तीसरी बार यूएस ओपन का एकल खिताब जीता है। ये उनका साल का दूसरा और करियर का 16वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। उनसे आगे हैं सिर्फ रोजर फेडरर जिन्होंने 19 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। न्यूयॉर्क में हुए फाइनल मुकाबले में नडाल ने दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन को अपने सामने टिकने ही नहीं दिया और सीधे सेटों में मात दी। खेल की बाकी खबरों की जानकारी हम आपको कार्यक्रम में आगे देंगे, लेकिन फिलहाल बता दें कि न्यूयॉर्क से करीब 1600 किलोमीटर दूर अमरीका के फ्लोरिडा राज्य में स्थिति कुछ अलग है। चक्रवाती तूफान इरमा के असर से जनजीवन ठप हो गया है। तट से टकराने के बाद तूफान की तीव्रता कम हुई है, लेकिन अब भी तेज हवाएं चल रही हैं और भारी बारिश हो रही है। मियामी शहर का एक हिस्सा पानी में डूब गया है और अब तक तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत की खबर है। पूरा ब्यौरा सुनिए दिनेश उप्रेती से।
कैरेबियाई द्वीपों में भारी तबाही मचाने के बाद इरमा तूफान अमेरिका के फ्लोरिडा से टकरा गया है। हालांकि इरमा तूफान को डाउनग्रेड कर तीसरी कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन फ्लोरिडा के तट पर हवा की रफ्तार तकरीबन 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तूफान से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियों का दावा किया गया, लेकिन इस दौरान 25 लाख घरों में बिजली नहीं थी। मियामी शहर के कई हिस्से पानी में डूबे हुए थे। फ्लोरिडा के लगभग 63 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर चले जाने को कहा गया था। कैंप डेविड से छुट्टियां बिताकर लौटे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इरमा को दैत्याकार तूफान बताया और तूफान से निपटने में जुटी केंद्रीय एजेंसियों की सराहना की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैं अभी अभी वापस लौटा हूं। हमने उच्च स्तरीय बैठक की है और प्रत्येक समूह मिलजुल कर काम कर रहे हैं। बुरी खबर ये है कि ये एक दैत्याकार तूफान है, लेकिन मैं सोचता हूं कि हमारे बीच बेहतरीन समन्वय है। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। इरमा अटलांटिक में पिछले 10 सालों का सबसे भयंकर तूफान है। कैरेबियाई द्वीपों में ये तूफान 25 से अधिक जाने ले चुका है। समंदर में 15 से 20 फुट ऊंची लहरें उठ रही हैं और लोगों में दहशत है। क्यूबा की राजधानी हवाना के निवासी अर्नेस्टो लोजा ने कहा, मैं 49 साल का हो गया हूं और मैंने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। समंदर में लहरें पहले भी उठती थीं, लेकिन इस तरह के हालात पहले नहीं बने थे। ये थे अर्नेस्टो लोजा के शब्द। इरमा अब धीरे धीरे नेपल्स में दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। लोगों को इंतजार है कि जानलेवा इरमा की रफ्तार धीमी पड़े और वे राहत की सांस ले सकें।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिनेश उप्रेती।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
रुख भारत का और बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने आरोप लगाया है कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ पर हमले की कोशिश की जा रही है। वर्किंग कमेटी की कल भोपाल में हुई बैठक के बाद बोर्ड ने कहा कि उन्हें शरीयत में किसी तरह का दखल मंजूर नहीं है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भोपाल से शुरय नियाजी।
रविवार को भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक दिन भर चली। इस बैठक में 3 तलाक के मामले पर बोर्ड के सदस्य आम राय नहीं बना पाए। इसी के चलते बोर्ड ने एक कमेटी बनाने का फैसला किया जो 3 तलाक से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी और यह कमेटी इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार सुधार संबंधी सुझाव भी बताएगी। बैठक में फैसला लिया गया कि संविधान में जो संरक्षण दूसरे धर्मों के लोगों को मिला है, वही संरक्षण मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। वहीं बोर्ड ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि तीन तलाक संबंधी उन सभी प्रकरणों को असंवैधानिक घोषित किया जाए जिनमें न्यायालय के हस्तक्षेप के बगैर विवाह समाप्त कर दिए गए हैं। इस पर बोर्ड ने अपनी नाखुशी जाहिर की और इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला माना है। बोर्ड ने यह भी कहा कि तीन तलाक को नापसंदीदा माना गया है लेकिन उसके बावजूद वो वैध है। लोग इसके इस्तेमाल से बचें, इसके लिए बड़े पैमाने पर सुधारवादी कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। बोर्ड सदस्य आरिफ मसूद ने बताया,
दो चीजें साफ कहती हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट का डिनाई नहीं कर रहा, हमने पहले दिन भी डिनाई नहीं करा, लेकिन मजाक लत शरीयत में अगर होगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट लेवल से जो बात आ रही है, जो गवर्नमेंट के बयान आ रहे हैं, उस लेवल से हमको ठीक नहीं लग रहा, तो बोर्ड उसको कंडम कर रहा।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में बाबरी मस्जिद मसले पर भी विचार किया गया। बोर्ड ने कहा कि इस पर किसी भी तरह से जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। आरिफ मसूद ने बताया,
बाबरी मस्जिद में भी सेम यही हो रहा है कि एक फरीक के कहने से भाई इंसाफ करना है, सुप्रीम कोर्ट पर सबको भरोसा, आज भी हम सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं अगर हिंदुस्तान में कहीं इंसाफ हमें भी मिल सकता है तो वो हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। तो जब इंसाफ मिलने की जगह उम्मीद है तो वहाँ किसी एक फरीक के कहने से तमाम फैक्ट्स के देखे बिना जल्दबाजी की क्या जरूरत।
वहीं बोर्ड की सदस्य और महिला विंग की संयोजक आसमा जहरा ने कहा कि तलाक के चंद मामलों का कोर्ट में जाने से यह मतलब नहीं है कि मजहब के अंदर औरतों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कहा कि अभी भी ज्यादातर मुस्लिम औरतें शरीयत के साथ हैं। बैठक में 51 सदस्यों में से 45 सदस्य मौजूद रहे। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
अगली खबर गुजरात से। लेखिका काजल ओझा वैद्य ने हाल में बीबीसी गुजराती सेवा के साथ महिलाओं के पीरियड को लेकर बातचीत की थी और अंधविश्वासों को खारिज किया था। इस इंटरव्यू के बाद उन्हें ऑनलाइन धमकी दी जा रही है। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की है। काजल से बात की हमारे सहयोगी आदर्श राठौर ने।
कौन बंदा है ये मैं नहीं जानती, लेकिन बहुत ही बदतमीज भाषा में उन्होंने लिखा है। ये किसी का सच्चा प्रोफाइल नहीं है। साइबर क्राइम ब्रांच हैज बीन मोर देन एफिशिएंट विद, दे हैव बीन सो मच कोऑपरेट। फेक प्रोफाइल है तो ढूंढने में वक्त तो लगेगा।
आप अपनी बेबाकी से अपनी बात रखती रही हैं, क्या पहले भी आपको इस तरह का सामना करना पड़ा कभी?
देखिए, जो भी सच बोलता है और जो भी प्रगति की बात करता है, बदलाव की बात करता है, उसको सुनना पड़ता है। उसको इतना तो होता है उनके साथ कि जो लोग पुरानी पीढ़ी के हैं, परंपरा के हैं, जो लोग ये समझते हैं कि कुछ भी बदलना नहीं चाहिए, वो लोग उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। आइडियली नहीं होता तो आश्चर्य होता। एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैंने जब कोई ऐसी बात कही जो नहीं अनुकूल है या जिनको लगा कि इससे अरे यार बड़ा बदलाव हो जाएगा, ये ऐसे बोल रही है, तो होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ पहली बार।
इस तरह से रिएक्ट करने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
मुझे लगता है विरोध करने का अधिकार किसी को भी है, कोई भी उठकर विरोध कर सकता है, लेकिन विरोध में तमीज होनी चाहिए। आप अपने विचार रखें, अपने विचार की बात करें। आई एम ओपन टू दैट, यू कॉल मी, टॉक टू मी, टेल मी कि ये यहाँ आप गलत हैं। अगर आपके पास शास्त्रों के प्रमाण हैं, आपके पास पुराणों की बात है, तो आप कहें मुझे कि कहा गया है ऐसा शास्त्रों में या पुराणों में या ऐसा। गालियां बकने से या पब्लिक मोलेस्टेशन से मुझे नहीं लगता आप कुछ पाएंगे, बल्कि आप अपने आप को ही छोटा दिखा रहे हैं। अगर आप सच में हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदुत्व में तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते की बात है कि नारी की पूजा करनी चाहिए, तो ये कैसा हिंदू है जो नारी के बारे में ऐसी गंदी बातें लिख रहा है?
अगर सवाल है तो उनके जवाब तलाशे जाने चाहिए, धमकी नहीं दी जानी चाहिए। ये थी काजल ओझा वैद्य। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। ये 5 महीने में उनका दूसरा दौरा है। इसे लेकर हमारे साथी आदर्श राठौर ने कोलकाता में मौजूद पत्रकार पीएम तिवारी से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि अमित शाह बार बार पश्चिम बंगाल क्यों जा रहे हैं।
जी हाँ, ये अभी पिछले अप्रैल में ही आए थे, फिर इतनी जल्दी उनके दौरे से साफ है कि उनके फोकस पर और उनकी पार्टी यानी भाजपा के फोकस पर बंगाल है इस बार, और बंगाल में अगले साल की शुरुआत में ही पंचायत चुनाव होने हैं। तो इस बार के दौरे का मकसद है पंचायत चुनाव के लिए जमीनी रणनीति को अंतिम रूप देना, इसलिए 3 दिन बिता रहे हैं यहाँ। और इस दौरान पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बैठकों का दौर होगा सोमवार को ही, और फिर वो मंगलवार को यहाँ उद्योगपतियों से भी मिलेंगे, फिर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उनके 3 दिन लगातार व्यस्त कार्यक्रम है उनका, और उनमें मुख्य फोकस है पंचायत चुनाव के जरिए ग्रामीण इलाकों में पैठ बनाना।
पिछले दिनों देखें तो जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए थे उनमें भी बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा बढ़ा है, तो क्या इससे भी उत्साहित है बीजेपी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पे फोकस कर रहे हैं?
पार्टी काफी उत्साहित है, जो स्थानीय नेता हैं जैसे दिलीप घोष हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना है कि अमित शाह को हम लोग एक विस्तारित रिपोर्ट पेश करेंगे कि कहाँ कैसे कितना वोट शेयर बढ़ा है भाजपा का इन चुनावों में, और हर जगह भाजपा नंबर दो पार्टी बन के उभरी है। हालांकि नंबर एक यानी तृणमूल कांग्रेस से फासला काफी है, लेकिन पिछले नतीजों के आधार पर देखें और कांग्रेस और वाम दलों का प्रदर्शन देखें तो भाजपा का प्रदर्शन काफी बेहतर कहा जा सकता है, तो इससे काफी उत्साह है पार्टी में।
ये थे पीएम तिवारी। राजनीतिक पारा बिहार में भी चढ़ा हुआ है। महागठबंधन टूटने के बाद से राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ताकत प्रदर्शन में जुटे हैं। इस कड़ी में कल उन्होंने भागलपुर में एक रैली की। इस रैली में ऐलान किया गया कि राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता सृजन घोटाले को लेकर मंगलवार यानी कल पूरे प्रदेश में विरोध जताएंगे। एक रिपोर्ट के साथ मनीष शांडिल्य।
भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में कल हुई सृजन के दुर्जनों की विसर्जन रैली में राजद ने सृजन घोटाले के बहाने सियासी लड़ाई को पूरे सूबे में विस्तार देने का ऐलान किया। लालू के छोटे बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रैली में कहा कि कल 12 सितंबर को सभी जिलों में राजद कार्यकर्ता धरना देंगे। साथ ही तेजस्वी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को इस घोटाले का मुख्य संरक्षक बताया और सीबीआई से इन दोनों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की।
मेरा मांग है सीबीआई से कि तुरंत इन तमाम नेताओं पर, इन अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो, जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और कड़े से कड़े धाराएं लगाने की जरूरत है।
रैली में लालू ने नीतीश कुमार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नीतीश कुमार को सृजन घोटाले का सृजनहार बताया और कहा कि इसी घोटाले के कारण उन्होंने महागठबंधन तोड़ा।
सृजन घोटाला की जानकारी बीजेपी मंत्रालय को था और नीतीश कुमार को खबर किया कि भाई आप जेल में जाओगे कि लालू से संबंध तोड़ोगे। मांग ये दिखाया है कि नॉलेज है, जानकारी में है, खुद ही बोले
साथ ही इस रैली के दौरान और इसके बाद तीखी जुबानी जंग भी देखने को मिली। रैली में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार को महिषासुर बताया। नीरज कुमार ने तेज प्रताप के बयान को भाषाई हिंसा करार दिया और लालू परिवार को नीतीश कुमार के खिलाफ सबूत पेश करने की चुनौती दी।
सृजन के नाम पर जो रैली हुई है, मैं आदरणीय लालू जी से ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई साक्ष है तो हम चुनौती उनको देते हैं तो वह साक्ष को प्रस्तुत करें कि राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का कोई लिखित आदेश है।
लालू यादव ने दो सप्ताह के अंदर दो बड़ी रैलियां कर अपनी सियासी ताकत दिखाई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस ताकत को लंबे समय तक समेटे रखना भी उनके लिए एक चुनौती होगी क्योंकि चुनाव अभी बहुत दूर है। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
और अब जान लेते हैं कि दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां क्या है। दिनेश जी मौजूद हैं स्टूडियो में। दिनेश जी क्या कुछ कह रहे हैं अखबार?
जी, गुरुग्राम में 7 साल के जो बच्चे की हत्या का मामला वो सभी सुर्खियों में है
जी।
इस मामले में रायन स्कूल के मालिक के खिलाफ केस दर्ज करने की खबर लगभग सभी अखबारों में है। रविवार को स्कूल के बाहर हिंसक प्रदर्शन हुए थे और स्कूल से 50 मीटर की दूरी पर खुले शराब के ठेके को भीड़ ने आग लगा दी थी। वहीं राजधानी दिल्ली में भी एक निजी स्कूल में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। दिल्ली सरकार ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं
जी।
वासले जी, आधार का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। अमर उजाला के मुताबिक कानपुर में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला एक गिरोह पकड़ा गया है। ये जालसाज UIDAI के सर्वर में सेंध लगाकर अधिकृत ऑपरेटर के फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाते थे। तो मतलब आधार फिर से एक बार चर्चा में
जी।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के कश्मीर दौरे को भी कई अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। द हिंदू ने इसी खबर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जम्मू दौरे को भी जगह दी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कथित फर्जी बाबाओं की एक सूची जारी की है। इस सूची में गुरमीत राम रहीम, आसाराम और रामपाल आदि के नाम शामिल हैं।
कुल मिला के 15 बाबा हैं शायद।
15 फेसबुक पर अगर आप अपनी नई कार की तस्वीर अपलोड करते हैं तो आयकर विभाग की नज़रों में आ सकते हैं। इस खबर को नवभारत टाइम्स ने पहले पन्ने पर छापा है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग अगले महीने से प्रोजेक्ट इनसाइट शुरू करने वाला है, जिसमें लोगों के काले धन का पता लगाने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटों को खंगाला जाएगा।
जी, नोटबंदी और GST लागू होने के बाद तो ये कहा जा रहा है कि आप कुछ भी करते हैं तो आयकर विभाग की नज़र में
आ जाएंगे। हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक दिल्ली में सभी यातायात अदालतों को अब भंग कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यातायात नियमों से जुड़े मामलों और चालान पर सुनवाई अब नियमित अदालतों में ही होगी। दैनिक जागरण में एक दिलचस्प खबर छपी है, वयस्क बच्चों की परवरिश के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। यानी कि 13 देशों में ये अध्ययन हुआ था और इसमें शिक्षा के लिए सर्वाधिक मदद में 59% अभिभावक और वयस्क बच्चे शिक्षा के लिए सर्वाधिक आर्थिक मदद देते हैं, ऐसा सर्वे में कहा गया
जी। दिनेश जी, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा हिंदुस्तान अखबार की एक तस्वीर पर, जिसमें दुनिया की परिक्रमा पर निकली हैं कुछ सेना की महिलाएं, जिन्हें रक्षा मंत्री सीतारमण ने रवाना किया और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी नजर आ रहे हैं।
जी जी, ये 6 महिला अफसर हैं जो पहली बार सागर परिक्रमा पर निकली हैं।
बहुत शुक्रिया दिनेश जी। हर सोमवार श्रोताओं को इंतजार होता है वस्तुल्ला खान की पाकिस्तान डायरी का, तो अब इंतजार खत्म और सुनिए वसत साहब क्या कह रहे हैं।
उसका नाम था वली बाबर और वो पाकिस्तान के सबसे बड़े निजी टीवी चैनल जियो का रिपोर्टर था। वो अल्ताफ हुसैन की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM की भी रिपोर्टिंग करता था। अब से कोई 4 वर्ष पहले वली बाबर घर से दफ्तर जा रहा था कि कराची के मसरूफ इलाके लियाकताबाद में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 लोगों ने उसे गोली का निशाना बना दिया और फरार हो गए। बाद में कातिल पकड़े गए और इनमें से 2 MQM के दफ्तर से पकड़े गए। इनका मुकदमा एंटी टेररिस्ट कोर्ट के हवाले कर दिया गया, जिसने इन्हें मृत्युदंड सुना दिया। मगर इस बीच वली बाबर कत्ल के तमाम चश्मदीद गवाह एक के बाद एक करके मार डाले गए। वली बाबर का नाम मैंने इसलिए ले लिया कि पिछले 20 वर्ष में पाकिस्तान में 70 के लगभग पत्रकार और मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग धार्मिक आतंकवादियों, राजनीतिक सशस्त्र दलों और गुप्तचर संस्थाओं के हाथों मारे जा चुके हैं, मगर सिवाय वली बाबर के एक का भी हत्यारा कानून के हाथ नहीं आ सका। इसीलिए जब गौरी लंकेश के कत्ल की खबर हमने सीमा पार सुनी तो मीडिया में किसी ने इस पे कोई खास टिप्पणी नहीं की, ना ही मीडिया बरादरी को कोई आश्चर्यजनक झटका लगा, क्योंकि हमारे पास गौरी लंकेश जैसी दर्जनों मिसालें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। शुरू शुरू में जब किसी पत्रकार के कत्ल की सूचना बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या सिंध से मिलती थी तो मीडिया की संस्थाएं हम लोगों को काली पट्टियां बंधवा के प्रेस क्लब के बाहर नारे भी लगवा देती थीं, कड़ी निंदा भी हो जाती थी, जांच की मांग भी हो जाती थी। कई वारदातों की जांच भी हुई और जब जांच रिपोर्ट इस तरह की आने लगी कि हो ना हो फलाने पत्रकार की हत्या किसी हत्यारे ने की है, तो अब हम लोग जांच का मुतालबा भी नहीं करते। आपके देश की सिविल सोसाइटी में अभी थोड़ी बहुत जान है और जब कोई अखलाक अहमद, कुलबर्गी या कोई गौरी लंकेश मारी जाती है तो कुछ ना कुछ शोर उठता है, मगर वारदातें तो अब समय के साथ बढ़ती चली जाएंगी। आप कितना और कितनी देर तक चीखेंगे? हम पर तो ये आफत जोर जबरदस्ती से उतारी गई, आपने तो खुद खरीदी है। कोई भी सिविल सोसाइटी कितना भी शोर मचा ले, वो विपक्षी दलों के समर्थन और आंदोलन के बगैर बहुत ज़्यादा असर नहीं डाल सकती, क्योंकि सामने वाले के शोर और फिर दब जाने या बिक जाने वाले मीडिया की TRP के सैलाब में सिविल सोसाइटी की आवाज़ को डूबने से बचाने का काम सिर्फ एक मजबूत विपक्ष ही कर सकता है, और विपक्ष को जैसे हमारे यहाँ बहुत अरसे पहले फालिज हो चुका, आपके यहाँ भी विपक्षी दलों पे यहाँ से वहाँ तक कब्रिस्तान की खामोशी छाई हुई है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके यहाँ ऐसी घटनाओं के विरोध में जो शोर उठ भी रहा है वो किसी डूबते जहाज के मुसाफिरों के शोर जैसा है? काश मेरा ये अंदाज़ा गलत निकले तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई और व्यक्ति ना होगा।
वसत साहब की डायरी पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और अब साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। श्रीलंका में 3 टेस्ट मैच 5 एक दिवसीय और 1 20-20 मैच जीतने के बाद भारतीय टीम जश्न के मूड में है, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलियाई टीम से निपटने की है। ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत में 5 एक दिवसीय और 3 20-20 मैच खेलेगी। इस सीरीज के पहले 3 एक दिवसीय मैचों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कल कर दिया गया। टीम में श्रीलंकाई दौरे पर शामिल शार्दुल ठाकुर को जगह नहीं मिली है। इसके अलावा इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे ऑलराउंडर आर अश्विन और रविंद्र जडेजा को भी आराम दिया गया है। टीम की कमान विराट कोहली संभालेंगे, जबकि ज्यादातर खिलाड़ी वही हैं जो श्रीलंका में खेले थे। श्रीलंका में भारतीय टीम को बेहद नजदीकी से देखने वाले पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज विजय दहिया मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला आसान नहीं होगा।
ऑस्ट्रेलिया टीम के अंदर 3 या 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पे मैच जिता सकते हैं, तो ये एक परीक्षा होगी और होनी भी चाहिए। भारतीय टीम जिस तरीके से अभी 9-0 से वहां पर जीत के आई है, उस लिहाज से आप चाहते हैं कि इस टीम की परीक्षा हो, क्योंकि जो आप खिलाड़ियों में निखार देखना चाहते हैं वो कड़ी परीक्षा के बाद ही निकलता है।
और अब समीक्षा। हॉकी में कोच को जब चाहे बाहर का रास्ता दिखाने की परंपरा की। बीते शुक्रवार को हॉकी इंडिया ने शॉर्ड मारिने को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच बना दिया। नीदरलैंड्स के मारिन इसी साल फरवरी में भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बनाए गए थे। इससे पहले वो किसी राष्ट्रीय पुरुष टीम के साथ नहीं जुड़े। मारिन फिलहाल भारतीय महिला टीम के साथ यूरोप के दौरे पर हैं। वो 20 तारीख से अपना पद संभालेंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते हॉकी इंडिया ने विदेशी कोच रोलेंट ऑल्टमैंस को हटा दिया था। इसका कारण भारतीय टीम के गिरते खेल को बताया गया। हॉकी इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष हरविंदर सिंह ने कहा,
कहीं ना कहीं जब परफॉर्मेंस रुक गई है और आगे आ नहीं रही, तो वो जो कमेटी है 2-3 दिन बैठक चली, इसमें सब कोचेज के जो सीनियर प्लेयर हैं उनके सपोर्टिंग स्टाफ सबके व्यूज लेने के बाद ये डिसाइड किया कमेटी ने कि फ्रेश पर्सन शुड कम विद न्यू आइडियाज ताकि वो टीम को आगे हाई लेवल तक ले जा सके।
वैसे रोलेंट ऑल्टमैंस की कोचिंग में भारतीय टीम रियो ओलंपिक में 8वें पायदान पर रही। इसके अलावा वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी पहुंची। 1975 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के अहम सदस्य रहे असलम शेर खान ऑल्टमैंस को हटाया जाना एक बहाना मानते हैं।
ऑल्टमैन को हटा दिया गया और इससे पहले भी कोचेज हटाए गए, और जिन कोचेज ने थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी अच्छी थी वो भी हटाए गए, वो डिफरेंट रीजन से हटे। तो मैं समझता हूँ कि ये ब्लेम गेम जो चल रहा है इस मुल्क के अंदर, कोई सिस्टम नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
अब भारत जैसे तैसे अगले साल एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतकर अगले ओलंपिक में जगह बनाना चाहता है। एशियाई खेलों में भी भारत अब तक सिर्फ 3 बार चैंपियन रहा है। पिछली बार सरदार सिंह की कप्तानी में जब टीम एशियाई खेलों में चैंपियन बनी तो इस बीच 16 साल निकल गए। 1998 और 2014 में टीम को चैंपियन बनाने वाले कोच थे एमके कौशिक।
यही कमेटी थी जिन्होंने उनको हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर रखा, यही कमेटी थी जिन्होंने अल्टरनेटिव चार्ज दिया, यही कमेटी थी जो 1 साल पहले बोल रही थी कि हमें इन पे बहुत भरोसा है। तो सडनली जो 1 साल में जो भरोसा टूटा है उसके कारण शायद नहीं डिस्क्लोज किए गए होंगे, लेकिन हम समझते हैं कि हमसे ज्यादा जिम्मेदारी मैनेजमेंट की भी है।
कोच का दर्द कोच ही जाने और न जाने कोई। अब देखना है कि नए कोच हॉकी इंडिया को कितनी ऊंचाई तक ले जा पाते हैं। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
वक्त हो रहा है विदा लेने का, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। कैरेबियाई द्वीपों में भारी तबाही मचाने के बाद इरमा तूफान अमेरिका के तटवर्ती प्रांत फ्लोरिडा से टकरा गया है। तूफान के बाद फ्लोरिडा में भारी बारिश हो रही है और सड़कों पर कई फुट पानी भर गया है। तूफान से अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने US ओपन का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में स्पेन के नडाल ने दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन को लगातार सेटों में 6-3, 6-3, 6-4 से हराया। जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल शाकाश्विली यूक्रेन में दाखिल होने में सफल हो गए हैं। इराकी कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति मसूद बारजानी ने संकेत दिए हैं कि अगर इराक आज़ादी के लिए जनमत संग्रह की उनकी मांग नहीं मानता तो वो भविष्य में कुर्दिस राष्ट्र के लिए अपनी सीमाएं खुद तय कर सकते हैं। हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में तलाशी अभियान 3 दिनों के बाद कल खत्म हो गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी शाकिर आलम के हाथ। फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया भूमिका ने। शाम 7:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। कार्यक्रम होगा दिन भर, तब तक देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप रुक कर सकते हैं bbchindi.com का। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।